नमस्कार, आज हम एक बहुत अहम गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन है, आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्वदर्शन। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका सार जीवन में उतारने लायक है। ये चर्चा हमें अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को एक तरह से नवीनीकृत करने का रास्ता समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो जैसा मैंने कहा, यह पूरी बातचीत पूज्य गुरुदेव के इसी उद्बोधन पर आधारित है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि जैसे शरीर को नया जीवन देने के लिए कायाकल्प होता है ना, वैसे ही आध्यात्मिक स्तर पर अंदरूनी तौर पर खुद को कैसे नया बनाया जाए। तो सबसे पहले यही सवाल आता है, ये आध्यात्मिक कायाकल्प आखिर है क्या? गुरुदेव इसे शारीरिक कल्प से कैसे जोड़ते हैं?
बिल्कुल, देखिए पूज्य गुरुदेव इसे बहुत सरलता से समझाते हैं। जैसे आयुर्वेद में शरीर कल्प होता है ना, उसका उद्देश्य क्या है? शरीर की कमजोरी, कोई बीमारी या बुढ़ापे के असर को कम करना, उसे निरोगी युवा जैसा बनाना। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक कायाकल्प में हमारी जो आस्था है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आदतें, उन पर जो अहम नकारात्मक परतें चढ़ जाती हैं, जिसे गुरुदेव कुसंस्कारिता कहते हैं, मतलब हमारी बुरी आदतें, गलत सोच, उनसे छुटकारा पाने का प्रयास ही आध्यात्मिक कायाकल्प है। यह असल में अंदर की सफाई और नवीनीकरण की प्रक्रिया है।
अच्छा, और गुरुदेव ने मनुष्य शरीर की क्षमता पर भी तो जोर दिया है कि अगर हम सही से रहें तो 100 साल पार कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, वे कहते हैं शरीर में अद्भुत क्षमता है, बस असंयम न हो।
सही बात है, पर चेतना के बारे में क्या? हमारी कॉन्शियसनेस, उसमें क्या क्षमता है?
देखिए चेतना को तो वे ईश्वर का ही अंश मानते हैं, तो जाहिर है उसमें सारी दिव्य शक्तियां, अहम जिन्हें वे विभूतियां कहते हैं, वो सब मौजूद हैं बीज रूप में। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, उसी का एक छोटा सा मॉडल है हमारा शरीर यानी पिंड, और जैसे परमात्मा है वैसे ही हमारी आत्मा उनकी एक छोटी प्रतिकृति। तो शरीर में वही तत्व है जो प्रकृति में है, बस बीज रूप में। इसीलिए साजना से स्वास्थ्य तो मिलता ही है, पर तप की ऊर्जा से उससे प्रकृति के गहरे रहस्य भी खुल सकते हैं।
वाह, ये तो बहुत ही गहरा है। आमतौर पर तो जैसे योग की बात होती है तो लोग सोचते हैं आसन, प्राणायाम या ज्यादा से ज्यादा शरीर शुद्धि की क्रियाएं, लेकिन पूज्य गुरुदेव का नजरिया शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
हाँ हाँ बिल्कुल, वे बहुत स्पष्ट करते हैं इस बारे में कि आसन वगैरह जो है वो तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक व्यायाम मात्र हैं, जरूरी हैं, पर वही सब कुछ नहीं। असली योग वो तो एक भावनात्मक चीज है, एक भीतरी प्रक्रिया। हमारा जो अंतराल है, मतलब हमारे मन और चेतना की गहराइयां, उन पर जो गलत विचारों, बुरी आदतों के पर्दे पड़ गए ना, जिन्हें वो अवांछनीय आच्छादन कहते हैं, उनको हटाना और उनकी जगह अच्छे गुणों को, अच्छे संस्कारों को स्थापित करना, यही योग है। इसमें क्या है कि अपने स्वभाव में जो गहरी बैठी हुई कुसंस्कारिता है उसकी जड़ें काटनी पड़ती हैं और अच्छी आस्थाओं को, अच्छे विचारों को मन में उगाना होता है। इसीलिए वे इसे कहते हैं अंतःक्षेत्र का समुद्र मंथन। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, विष और अमृत निकला था, वैसे ही अपने अंदर गहरे उतरकर अच्छे बुरे विचारों और संस्कारों को मथना, ताकि स्पष्टता और पवित्रता मिले।
अच्छा, अंतःक्षेत्र का समुद्र मंथन, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और तप, तप का क्या अर्थ है इस संदर्भ में?
तप का सीधा सा अर्थ वे बताते हैं, अपने हर काम में, अपनी हर क्रिया प्रक्रिया में अनुशासन और संयम, बस।
समझ गई। तो ये समझ आता है कि जप, स्वाध्याय जैसे भारी अभ्यास तो हैं ही, पर शायद गुरुदेव किसी और चीज पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। कल्प साधना का असली मर्म क्या है फिर?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, जप, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब महत्वपूर्ण हैं, अपनी जगह है, लेकिन पूज्य गुरुदेव सबसे ज्यादा महत्व देते हैं चिंतन और मनन को। वे कहते हैं कि साधना का जो समय है ना, वो मुख्य रूप से इसी काम के लिए है। अपने अंदर की दुनिया की जो उलझने हैं, गुत्थियां हैं, उनको सुलझाने के लिए मंथन करने का समय। इस दौरान क्या करना है? दुनिया भर की चिंताओं से मन को हटाना है, अपने अंदर झांकना है और उन बातों पर सोचना है, गहराई से विचार करना है, जिन पर हमने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया। यही कल्प साधना की, समझिए, रीढ़ की हड्डी है।
तो मतलब ये चिंतन और मनन सिर्फ ऐसे ही सोचना विचारना नहीं है, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके विषय क्या होने चाहिए, मतलब किस पर चिंतन करें और किस पर मनन?
हाँ बिल्कुल, व्यवस्थित प्रक्रिया है। देखिए चिंतन का विषय है आत्मशोधन। आत्मशोधन यानी अपनी कमियों को पहचानना ईमानदारी से और फिर उन्हें दूर करने के लिए अनुशासन और संयम का अभ्यास करना, जैसे जैसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, पैसे का सही इस्तेमाल करना, समय बर्बाद ना करना, अपने विचारों पर लगाम रखना। इसके लिए जरूरत होती है एकदम निष्पक्ष होकर, जैसे कोई जज होता है ना, वैसे अपनी गलतियों को देखना बिना किसी बहानेबाजी के, बिना खुद का पक्ष लिए। ये हुआ चिंतन। और फिर है मनन। मनन का विषय है आत्मपरिष्कार। आत्मपरिष्कार मतलब खुद को बेहतर बनाना, गुणों को विकसित करना और ये सोचना कि सेवा साधना को, मतलब दूसरों की भलाई के काम को, अपने जीवन में कैसे उतारें। गुरुदेव का बड़ा सुंदर क्रम है, पहले मल त्याग फिर भोजन, है ना, पहले कपड़े की धुलाई फिर रंगाई। वैसे ही पहले चिंतन से अपनी सफाई करनी है, अपनी कमियों को हटाना है, फिर मनन से स्वयं का निर्माण करना है, विकास करना है।
तब ये हुआ कि सिर्फ पूजा पाठ कर लेना ही काफी नहीं है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए।
हाँ, गुरुदेव यही कहते हैं, पूजा उपासना जरूरी है, उससे रोजमर्रा के जीवन में जो मन पर मैल चढ़ता है उसकी सफाई होती है, शांति मिलती है। लेकिन जो जीवन का असली लक्ष्य है वो सिर्फ इतने से पूरा नहीं होता, उसके लिए आत्मा में तीन चीजें जगानी पड़ती हैं, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। श्रद्धा मतलब ईश्वर में अच्छे मूल्यों में गहरा विश्वास, प्रज्ञा यानी सही गलत को समझने वाली विवेक बुद्धि, और निष्ठा मतलब अच्छाई के रास्ते पर टिके रहने का पक्का संकल्प। और ये तीनों चीजें कैसे जगती हैं? वो जगती हैं त्रिवेणी संगम से।
त्रिवेणी संगम, हाँ, त्रिवेणी संगम यानी उपासना पूजा पाठ के साथ साथ संयम साधना यानी आत्मानुशासन जो चिंतन से आता है, और आराधना यानी निस्वार्थ सेवा, लोक मंगल के कार्य जो मनन से आता है। जब ये तीनों मिलते हैं, उपासना, संयम और सेवा, तब जीवन सफल होता है। यही वो फॉर्मूला है। उद्देश्य क्या है? ईश्वर ने यह दुनिया रूपी बगीचा बनाया है, हमें इसमें कुशल माली की भूमिका निभानी है, इसे और सुंदर बनाना है।
ये बहुत सुंदर बात कही, पर ये सब करने के लिए आत्मशोधन, फिर आत्म परिष्कार, फिर सेवा, इसके लिए शक्ति, साधन, ये सब कहाँ से आएगा? जीवन की अपनी जरूरतें भी तो होती हैं।
बिल्कुल होती हैं। इसका रास्ता भी पूज्य गुरुदेव बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारे जो साधन है, वो अक्सर हमारी अपनी इच्छाओं, लिप्सा तृष्णा या परिवार के मोह में जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाते हैं बेवजह। उसी में कटौती करनी होगी, थोड़ी बचत करनी होगी, ऊर्जा की भी और साधनों की भी, और उसी बचत को लगाना होगा अपने आत्मकल्याण में और समाज की भलाई में, लोक मंगल के कामों में। यही वो सिद्धांत है जिसे गुरुदेव समय दान और अंशदान कहते हैं।
हाँ, गायत्री परिवार में इसका अभ्यास भी बताया गया है।
जी, कम से कम रोज एक घंटा समय और अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से ज्ञान यज्ञ यानी अच्छे कामों के लिए लगाना, क्योंकि उदारता और सेवा के बिना आध्यात्मिक साधना ऐसी ही है जैसे बंजर जमीन पर खेती करना, कोई फसल नहीं मिलेगी।
इसमें ईमानदारी से खुद को देखना पड़ता है, अनुशासन लाना पड़ता है, चिंतन से अपनी सफाई करनी होती है, और फिर मनन से सेवा और बेहतरी का रास्ता बनाना होता है। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, ये तो चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का पूरा रूपांतरण है।
बिल्कुल सही कहा आपने,
एकदम सटीक।
पूज्य गुरुदेव हमें लगातार इसी आत्मनिरीक्षण के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज हम सबके लिए, जो भी ये सुन रहे हैं, उनके लिए विचार करने योग्य एक प्रश्न हो सकता है कि हमारे अपने गुण, कर्म या स्वभाव में ऐसी कौन सी एक अवांछनीयता है, कोई एक नकारात्मक आदत जिसे हम आज पहचान सकते हैं और बस उसे दूर करने का एक छोटा सा संकल्प लेकर अपने अंतः क्षेत्र के मंथन की शुरुआत कर सकते हैं। यहीं से शुरू हो सकता है ये कायाकल्प।
बहुत ही सार्थक विचार। इसी के साथ ओम शांति ही।